एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस।
हाँ,
इसने हमारे सोचने महसूस करने के ढंग को काफी बदल दिया है।
हाँ, और इसे समझने के लिए हम डैनियल पिक के काम का सहारा ले रहे हैं। उनके कुछ सारांश हैं, जैसे साइकोएनालिसिस फाउंडेशंस।
हाँ, साइकोएनालिसिस अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
ये हमें एक अच्छा नजरिया देते हैं।
बिल्कुल।
मैं हूँ आपकी पहली मेजबान
जी,
और मेरे साथ है हमारे एक्सपर्ट
जी।
तो सवाल ये है कि ये विषय जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, आज भी क्यों जरूरी है?
क्या लगता है?
देखिए, यही तो खास बात है।
हाँ,
मनोविश्लेषण के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे अचेतन मन हुआ या बचपन के एक्सपीरियंसेस का असर,
हाँ
वो हमारी भाषा में, हमारी कहानियों में, फिल्मों में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी रच बस गए हैं। मतलब अनजाने में ही सही हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम फ्रॉयड या उनके बाद के विचारकों की भाषा बोल रहे हैं। फ्रॉयडियन स्लिप तो आम बात है।
सही कहा। तो ये समझना कि हम कई बार अजीब सा बर्ताव क्यों करते हैं या कुछ भावनाएं क्यों हावी हो जाती हैं, शायद इसके कुछ तार मनोविश्लेषण से जुड़ते हो।
हाँ बिल्कुल। उम्मीद है आज की बातचीत से कुछ पढ़ते खुलेंगी।
चलिए तो शुरू करते हैं डैनियल पिक से। ये हैं कौन और इनकी बात में क्या खास है?
डैनियल पिक सिर्फ एक एकेडमिक नहीं है, वो लंदन के बर्गबेक कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं।
अच्छा।
और साथ ही वो एक प्रैक्टिसिंग मनोविश्लेषक भी हैं, ब्रिटिश साइको एनालिटिकल सोसाइटी के फेलो भी।
ओह, तो मतलब ड्यूअल पर्सपेक्टिव है, एक इतिहासकार का भी और एक प्रैक्टिशनर का भी।
एग्जैक्टली।
इतिहासकार के तौर पे वो देख पाते हैं कि ये विचार कैसे किस माहौल में पैदा हुए, वियना में उस समय के समाज में युद्धों के दौरान।
हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं। और मनोविश्लेषक होने के नाते उन्हें क्लिनिकल साइड का पता है, थेरेपी रूम में असल में क्या होता है, वो रिश्ता कैसे काम करता है, सिद्धांत प्रैक्टिकल कैसे होते हैं।
तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हुआ,
ये अनुभव पर आधारित है।
बिल्कुल, इसीलिए उनका नजरिया काफी संतुलित और गहरा माना जाता है।
ठीक है, तो पिक के काम का मुख्य सार क्या है? वो क्या बताना चाह रहे हैं मनोविश्लेषण के बारे में?
देखिए, पिक का मकसद है मनोविश्लेषण को लेकर जो मिस्ट्री या गलत फहमियां हैं उन्हें थोड़ा कम करना। वो इसे सिर्फ फ्रॉयड तक सीमित नहीं रखते।
अच्छा।
वो दिखाते हैं कि ये एक लगातार विकसित होने वाली, बदलने वाली और हाँ, कभी कभी काफी विवादास्पद फील्ड भी रही है।
और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार
वो है अचेतन मन का, अनकॉन्शियस माइंड। मतलब ये मानना कि हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसी इच्छाओं, यादों, संघर्षों से चलता है जिनके बारे में हमें होश ही नहीं है।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम खुद अपने मन के पूरे कंट्रोल में नहीं हैं। हाँ, यही इसकी बुनियाद है। उस समय के लिए तो ये वाकई में जबरदस्त क्रांतिकारी सोच थी।
तो पिक हमें इस सफर पर कैसे ले जाते हैं, शुरू कहां से करते हैं?
वो शुरू करते हैं 19वीं सदी के अंत के वियना से, जहां फ्रॉयड और ब्रूयर ने टॉकिंग क्योर यानी बातचीत से इलाज पर काम करना शुरू किया।
हाँ हाँ।
फिर वो फ्रॉयड के जो कोर आइडियाज हैं उन्हें समझाते हैं, जैसे रिप्रेशन यानी दमन, हम बुरी यादों को कैसे दबा देते हैं, ट्रांसफरेंस, बचपन की भावनाएं आज के रिश्तों पर कैसे असर डालती हैं, और वो मन के मॉडल इड, ईगो, सुपर ईगो।
लेकिन कहानी फ्रॉयड पर ही खत्म नहीं होती है ना, पिक आगे भी बढ़ते हैं।
बिल्कुल नहीं, यही तो वो बताते हैं। वो हमें फ्रॉयड के बाद के लोगों से भी मिलवाते हैं, कार्ल यंग, अल्फ्रेड एडलर, फिर मेलानी क्लाइन, विनिकॉट, फ्रांस में जैक्स लकान।
अच्छा, काफी लोग हैं।
हाँ, तो ये दिखाता है कि ये फील्ड रुकी नहीं, इसमें लगातार बहसें हुई, नए विचार जुड़े, ये बदलता रहा।
और ये विचार सिर्फ क्लिनिक या थ्योरी तक ही नहीं रहे, बाहर भी फैले।
हाँ, यही तो पिकी की खासियत है, वो ये कनेक्शन दिखाते हैं। कैसे ये आइडियाज कला में आए, सरियलिज्म याद है?
हाँ बिल्कुल, डॉली वगैरह।
साहित्य में, फिल्मों में, हिचकॉक की फिल्मों के विश्लेषण में तो मनोविश्लेषण खूब इस्तेमाल होता है।
हाँ, साइको फिल्म।
और हमारी रोज की भाषा में भी फ्रॉयडियन स्लिप, ईगो, रिप्रेशन, ये सब शब्द आम हो गए हैं। पिकी आलोचनाओं पर भी बात करते हैं जिससे एक बैलेंस्ड व्यू मिले।
चलिए कुछ मुख्य विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। वो टॉकिंग क्योर वाली बात से शुरू करते हैं, अननाओ।
हाँ, ये बड़ा फेमस केस है। बर्था पेपेनहाइम उनका असली नाम था। उन्होंने पाया कि जब वो अपनी तकलीफों, अपने लक्षणों के बारे में खुलकर बिना रोक टोक के बात करते हैं तो उन्हें आराम मिलता है।
अच्छा।
फ्रॉयड और उनके साथी ब्रूअर ने इसे नोट किया और यहीं से फ्रॉयड ने फ्री एसोसिएशन की टेक्निक डेवलप की। मतलब मरीज के मन में जो कुछ भी आ रहा है, जैसा हाँ। भी आ रहा है, उसे बिना सेंसर किए बोलने देना।
और इसके पीछे सोच क्या थी?
सोच ये थी कि जो दबी हुई भूली हुई यादें या भावनाएं हैं, वही हमारी मानसिक परेशानी की जड़ हैं। बोलने से वो सतह पर आती हैं और उनका असर कम होता है।
दिलचस्प। और फिर आया वो बड़ा आइडिया, अचेतन मन और सपने। फ्रॉयड ने तो सपनों को अचेतन तक जाने वाला शाही रास्ता कहा था। इसका क्या मतलब हुआ?
फ्रॉयड का मानना था कि सपनों के दो लेवल होते हैं। एक तो वो कहानी जो हमें याद रहती है, उसे वो कहते थे मैनिफेस्ट कंटेंट।
हाँ, जो हम सुबह याद करते हैं।
बिल्कुल। और दूसरा होता है लेटेंट कंटेंट, यानी उस कहानी के पीछे छिपा हुआ असली मतलब, हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर।
अच्छा, तो सपने सीधे सीधे नहीं होते?
नहीं, फ्रॉयड कहते थे कि हमारा दिमाग सोते हुए इन छिपी हुई बातों को अजीब सी शक्ल दे देता है। इसे उन्होंने ड्रीम वर्क कहा। इसमें दो मुख्य तरीके काम करते हैं। कंडेंसेशन, जहां कई सारे विचार एक ही इमेज में मिल जाते हैं।
जैसे?
जैसे सपने में कोई एक इंसान दिख रहा है, पर उसमें आपके दोस्त, आपके पिता और शायद आपके बॉस, तीनों की झलक हो।
ओ, और दूसरा?
दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो भावना असल में किसी जरूरी चीज से जुड़ी है, उसे किसी मामूली चीज पर डाल देना। जैसे आपको अपने बॉस पर गुस्सा है, पर सपने में आप किसी अजनबी पर चिल्ला रहे हैं।
अरे वाह, मतलब हमारे सपने भी पहेलियां हैं एक तरह से। और फ्रॉयड का जो सेक्सुअलिटी पर जोर था, वो तो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है।
हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि फ्रॉयड के लिए सेक्सुअलिटी का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं था। वो इसे लिबिडो कहते थे, एक तरह की लाइफ एनर्जी जो बचपन से ही हमें मोटिवेट करती है। इसी से जुड़ा है उनका सबसे विवादित आइडिया, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स।
हाँ, इसके बारे में सुना है। क्या था ये?
उनका विचार था कि बचपन में, करीब 3 से 6 साल की उम्र में, बच्चे के मन में अपने ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट के लिए एक तरह की अचेतन चाहत पैदा होती है, और सेम सेक्स पेरेंट के लिए जलन या प्रतिद्वंद्विता।
ओह, ये तो सुनने में ही अजीब लगता है।
और अपराध बोध या गिल्ट जैसी भावनाओं को विकसित करने के लिए जरूरी है।
और इसी से बचपन का महत्व जुड़ जाता है, वो कहावत, बच्चा ही मनुष्य का पिता है।
बिल्कुल। फ्रॉयड ने विकास के चरण बताए थे, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ओरल, एनल, फैलिक वगैरह। उनका कहना था कि इन स्टेजेस के अनुभव, खासकर पेरेंट्स के साथ, हमारी अडल्ट पर्सनैलिटी पर गहरी छाप छोड़ते हैं।
मतलब अगर किसी स्टेज पर कोई गड़बड़ हुई
तो वो फिक्सेशन बन सकती है। मतलब व्यक्ति उसी स्टेज की कुछ आदतों या समस्याओं में अटक सकता है, जो बड़े होकर उसके व्यवहार में दिखती हैं। जैसे ओरल फिक्सेशन वाले शायद ज्यादा खाते पीते हों या बातें करते हों।
लेकिन क्या सब लोग फ्रॉयड से सहमत थे? उनके अपने ग्रुप में भी तो झगड़े हुए।
हाँ, बिल्कुल हुए। फ्रॉयड के जो शुरुआती साथी थे, जैसे कार्ल यूंग और अल्फ्रेड एडलर, वो बाद में अलग हो गए। उनके विचार अलग थे।
कैसे अलग थे?
यूंग ने जैसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का आइडिया दिया, मतलब एक ऐसा अचेतन हिस्सा जो हम सब में कॉमन है, जिसमें पुराने मिथक, प्रतीक, आर्केटाइप्स होते हैं। ये सिर्फ पर्सनल नहीं था।
अच्छा।
और एडलर?
एडलर ने सेक्सुअलिटी पर कम और हीनता की भावना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और पावर या सुपीरियोरिटी पाने की इच्छा पर ज्यादा जोर दिया।
और बाहर से भी तो आलोचना हुई होगी।
जबरदस्त। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या ये सब बातें साइंटिफिक है? क्या इन्हें साबित किया जा सकता है? कार्ल पॉपर जैसे फिलोसोफर ने कहा कि ये साइंस नहीं है, क्योंकि इसे गलत साबित नहीं किया जा सकता।
हाँ, ये तो बड़ा सवाल है।
फिर फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने कहा कि इसमें पुरुषवादी सोच हावी है, जैसे पेनिस एनवी का विचार। और ये सवाल भी उठा कि क्या ये सिद्धांत हर कल्चर पर, हर समाज पर लागू होते हैं? ये बहसें आज तक जारी हैं।
तो फ्रॉयड के बाद ये फील्ड रुका नहीं, कैसे आगे बढ़ा? पे किन लोगों का जिक्र करते हैं? हाँ, फ्रॉयड के बाद भी ये बहुत विकसित हुआ। ब्रिटेन में ऑब्जेक्ट रिलेशन स्कूल बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसमें मिलानी क्लाइन थी, जिन्होंने छोटे बच्चों के इंटरनल वर्ल्ड पर, उनके डर, फैंटेसीज पर बहुत काम किया।
बच्चों पर?
हाँ, उन्होंने प्ले थेरेपी के जरिए बच्चों के अचेतन को समझने की कोशिश की। फिर डोनाल्ड विनिकॉट थे, जिनके गुड इनफ मदर और ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स बहुत पॉपुलर हुए।
गुड इनफ मदर मतलब परफेक्ट मानेंगे?
हाँ, उनका कहना था कि बच्चे के लिए परफेक्ट माँ होना जरूरी नहीं, बस गुड इनफ, यानी बच्चे की जरूरतें समझने वाली, प्यार और सुरक्षा देने वाली माँ काफी है। ये पेरेंट्स के लिए बड़ी राहत की बात थी।
और ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट?
वो जैसे बच्चों का कोई खास खिलौना या कंबल होता है ना, जो उन्हें माँ की गैर मौजूदगी में कम्फर्ट देता है। वो बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है।
अच्छा। और फ्रांस में जैक्स लकों, उनका क्या योगदान था?
लाकान थोड़े मुश्किल विचारक माने जाते हैं। उन्होंने फ्रॉयड को भाषा विज्ञान और स्ट्रक्चरलिज्म के नजरिए से दोबारा पढ़ा। उनका वो फेमस कोट है ना, अचेतन एक भाषा की तरह संरचित है।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब हमारा अचेतन मन भले ही अजीब लगे पर वो रैंडम नहीं है, वो भी भाषा की तरह कुछ नियमों, पैटर्न, स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करता है। इसे समझना थोड़ा जटिल है पर इसने मनोविश्लेषण पर गहरा असर डाला।
तो इन सब विचारों का असर सिर्फ अकादमिक दुनिया या थेरेपी रूम तक ही सीमित नहीं रहा, संस्कृति पर भी पड़ा।
बिल्कुल, असर तो बहुत गहरा और फैला हुआ है। जैसे मैंने कहा, सीरियलिज्म आर्ट मूवमेंट ने तो सीधे सीधे अचेतन से प्रेरणा ली। सपने, अजीब कॉम्बिनेशंस,
हाँ वो पेंटिंग्स देख के लगता भी है।
फिल्मों और साहित्य की आलोचना में मनोविश्लेषण एक टूल बन गया, किरदारों के छिपे हुए मोटिव्स, उनके साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने के लिए। हिचकॉक की फिल्में तो क्लासिक केस स्टडी हैं।
सही, और रोजमर्रा की भाषा,
वो तो ही फ्राइड एंड स्लिप, ईगो, रिप्रेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब शब्द अब आम बोलचाल का हिस्सा है भले ही हमें इनका ओरिजिन न पता हो।
पिक, आज के समय में ये कैसे काम करता है इसका भी कोई उदाहरण देते हैं।
हाँ, वो एक कंटेम्प्रेरी केस स्टडी का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि आज प्रैक्टिस कैसे होती है। आज फोकस सिर्फ बचपन के ट्रॉमा को खोदना नहीं रह गया है,
तो फिर क्या है,
बल्कि ये समझना है कि व्यक्ति अपनी मौजूदा जिंदगी में, खासकर अपने रिश्तों में, क्यों बार बार एक ही तरह के मुश्किल या नुकसानदेह पैटर्न में फंस जाता है।
अच्छा,
और इसमें ट्रांसफरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत सेंट्रल है।
ट्रांसफरेंस ये क्या चीज है? पहले भी जिक्र आया था।
ट्रांसफरेंस मतलब वो तरीका जिससे हम अनजाने में अपने अतीत के जरूरी रिश्तों, जैसे माँ, पिता, भाई बहन के साथ की भावनाएं, उम्मीदें, डर, आज के लोगों पर, खासकर थेरेपिस्ट पर प्रोजेक्ट कर देते हैं।
उदाहरण के लिए,
जैसे अगर किसी के पिता बहुत क्रिटिकल थे तो वो शायद अपने बॉस, अपने पार्टनर या अपने थेरेपिस्ट में भी बेवजह क्रिटिसिज्म देखेगा या उनसे डर महसूस करेगा। वो असल में अतीत की भावनाएं हैं जो वर्तमान पर हावी हो रही हैं।
ओह, तो थेरेपी में इसे समझा जाता है।
हाँ, इसे पहचानना और इस पे काम करना थेरेपी का एक मुख्य हिस्सा है। जब व्यक्ति ये समझ पाता है कि वो थेरेपिस्ट के साथ कैसा महसूस कर रहा है और ये उसके अतीत से कैसे जुड़ा है, तो उसे अपने पैटर्न बदलने में मदद मिलती है।
अच्छा, तो इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें या संदेश निकल कर आ रहे हैं जो पिक हाईलाइट करना चाहते हैं?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात तो अचेतन मन की शक्ति है। ये आइडिया कि हमारे अंदर एक अनदेखी दुनिया है जो हमें चलाती है, ये बहुत पावरफुल है।
हाँ, कि हम पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं हैं।
दूसरी, शुरुआती जिंदगी का गहरा महत्व। बचपन के अनुभव, खासकर पहले रिश्ते, हमारी नींव रखते हैं। अतीत कभी मरता नहीं, वो आज भी एक्टिव रहता है।
ये बात तो भारतीय समाज में भी बहुत मानी जाती, बचपन के संस्कार वगैरह।
बिल्कुल। तीसरी बात कि मनोविश्लेषण कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली, विकसित होती, बहस करती हुई परंपरा है। ये फ्रॉयड पर खत्म नहीं हुई।
हाँ, इसमें कई अलग अलग मत है।
चौथी, हमारे अंदर की दुनिया और बाहरी दुनिया यानी संस्कृति का गहरा रिश्ता। मनोविश्लेषण सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं करता, ये समाज, परिवार, कला, इन सब पर भी रोशनी डालता है
कि कैसे सामाजिक दबाव हमारे अंदरूनी संघर्षों को शक्ल देते हैं।
बिल्कुल। और पांचवी, टॉकिंग क्योर या बातचीत की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में अनोखी है। ये सिर्फ सलाह देना लेना नहीं है, ये फ्री एसोसिएशन, सपनों और खासकर ट्रांसफरेंस के जरिए खुद के अनदेखे हिस्सों से जुड़ने का एक तरीका है, अपनी कहानी को समझने और शायद बदलने का।
पिक की किताब में या उनके काम में कुछ ऐसी बातें, कोट्स या विचार भी हैं जो खास तौर पर याद रह जाते हैं।
हाँ, कई हैं, जैसे लाकान का वो विचार, अचेतन एक भाषा की तरह संरचित है। ये याद दिलाता है कि हमारे अंदर की उथल पुथल भी किसी नियम से बंधी है, उसे समझा जा सकता है।
और फ्रॉयड का वो लक्ष्य, जहां इड था वहां ईगो होगा।
हाँ, ये मनोविश्लेषण के मकसद को बताता है कि अचेतन की जो बेलगाम इच्छाएं हैं, इड, उन्हें दबाना नहीं बल्कि समझकर सचेत मन, ईगो के कंट्रोल में लाना है। ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस, ज्यादा चॉइस।
और वो सपनों वाली बात,
सपनों की व्याख्या अचेतन तक जाने वाला शाही रास्ता है। ये दिखाता है कि खुद को समझने के लिए ऊपरी बातों से आगे जाना होगा, छिपे हुए मतलबों, इशारों पर ध्यान देना होगा।
और वो एहसास के अतीत हमेशा साथ रहता है।
हाँ, वो फॉकनर की लाइन है पर मनोविश्लेषण पर फिट बैठती है। अतीत कभी मरता नहीं, ये तो अतीत भी नहीं होता। मतलब वो आज भी हम पर असर डाल रहा है, हमारे रिश्तों में, हमारे डर में, हमारी आदतों में।
तो ये सब गहरी बातें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं? कोई प्रैक्टिकल तरीका है?
सबसे पहला तो शायद सेल्फ अवेयरनेस बनाना, अपने रिएक्शंस पर ध्यान देना। हम मुश्किल सिचुएशन में कैसे बचाव करते हैं, क्या हम डिनाइल में चले जाते हैं, क्या हम दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, प्रोजेक्शन।
हाँ, अपने पैटर्न को पहचानना,
कभी कभी अपनी फ्राइडियन स्लिप्स पर गौर करना, क्या जुबान से कुछ ऐसा निकल गया जो दिल में था।
और रिश्तों में,
रिश्तों को शायद थोड़ी गहराई से देख सकते हैं। ट्रांसफरेंस का हल्का सा आइडिया होने पर भी हम सोच सकते हैं, क्या मैं इस इंसान पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर रही हूं, कहीं ये मेरे अतीत की वजह से तो नहीं। इससे शायद हम लोगों को उनकी असलियत में देख पाए, ना कि अपने अतीत के चश्मे से।
ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है ऑफिस में भी, परिवार में भी।
बिल्कुल, और पेरेंटिंग में विनिकॉट की वो बात, गुड इनफ पेरेंटिंग, ये दबाव कम करती है। परफेक्ट होने की कोशिश छोड़कर बच्चे की जरूरतें समझने और प्यार देने पर फोकस करना, उनके नखरों या गुस्से को उनकी किसी अनकही जरूरत या डर की तरह देखना।
हाँ, ये नजरिया बदल सकता है।
और हाँ, कल्चर को समझने में फिल्में, किताबें देखते पढ़ते वक्त सिंबल्स, छिपे हुए मतलब, किरदारों की साइकोलॉजी पर सोचना, एक अलग लेवल का मजा आता है।
और मानसिक स्वास्थ्य को देखने का तरीका भी बदल सकता है।
हाँ, चिंता या डिप्रेशन को सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस न मानकर ये भी देखना कि कहीं ये व्यक्ति की कहानी उसके अंदरूनी संघर्षों का कोई संकेत तो नहीं दे रहे।
तो इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे अहम या सरप्राइजिंग टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए शायद यही कि ये फील कितना डायनामिक और जिंदा है। ये सिर्फ फ्रॉइड की पुरानी थ्योरी नहीं, बल्कि एक लगातार चलती हुई बातचीत है जिसमें आज भी नए विचार आ रहे हैं।
और मेरे लिए ये एहसास कि हम इंसान कितने कॉम्प्लेक्स हैं, हमारे सचेत इरादों के पीछे कितनी अचेतन ताकतें काम कर रही हैं, ये खुद को और दूसरों को थोड़ी ज्यादा हमदर्दी और समझ से देखने का एक फ्रेमवर्क देता है, भले ही इसकी हर बात साइंटिफिकली प्रूव्ड ना हो।
बिल्कुल, पिक का काम यही दिखाता है कि मनोविश्लेषण इंसान को समझने का एक बहुत जरूरी नजरिया देता है, जो साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस जैसे दूसरे तरीकों का पूरक है। ये हमें इंसानी अनुभव की जटिलताओं को समझने के लिए कीमती टूल्स देता है।
हाँ, ये हमें अपनी उलझनों को, अपनी इच्छाओं और डरों को समझने में वाकई मदद कर सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।